ஜனாஞ்சனசலாகய சக்ஷுர்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन ने सोचा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करें, क्योंकि ये प्रश्न कई बार लोग उठाते हैं और तर्क भी करते हैं इस विषय के ऊपर। कई बार लोग ऐसा कहते हैं, भगवान है ये क्या सबूत है, क्या आप हमें भगवान दिखा सकते हैं, कहाँ है भगवान, अगर भगवान है तो हमें दिखने चाहिए, तो क्या हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान को देखना इसका मतलब क्या है और भगवान को देखने की योग्यता क्या है। इस विषय के ऊपर आज संक्षेप में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। जब लोग ऐसा कहते हैं कि क्या आप हमें भगवान को दिखा सकते हैं, वो इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी आंखों की शक्ति कितनी है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अगर ये सारी रोशनी खत्म हो जाए, अंधकार हो जाए, तो फिर हमारे आंखों के सामने हम अपने हाथ को भी नहीं देख पाएंगे, तो इन आंखों के ऊपर हमारा इतना गर्व क्यों है कि हम कहते हैं कि हम इन आंखों से भगवान को देखना चाहते हैं। इन आंखों की क्या वो शक्ति है कि वो भगवान को देख पाए। कई बार लोग कहते हैं, आप मंदिर क्यों जाते हैं, मंदिर में क्या रखा है, भगवान तो सभी जगह है। अवश्य भगवान सभी जगह है, परंतु क्या आप भगवान को हर जगह देख सकते हैं, क्या वो दृष्टि है आपकी, अगर नहीं है तो चलिए आइए मंदिर में और देखिए भगवान सुंदर रूप में विराजे हैं, उनका दर्शन कीजिए और ये देखिए सामने भगवान है। और वैसे भी अगर भगवान सब जगह हैं तो क्या वो मंदिर में नहीं है। भगवान ये अर्चा विग्रह का रूप धारण करते हैं हम सबको उनका सुंदर रूप दर्शाने के लिए। इन आंखों से भगवान को देखना संभव नहीं है, हमें दिव्य चक्षु चाहिए, आध्यात्मिक नेत्र चाहिए जिनसे हम भगवान को देख सकेंगे। भगवान की सेवा करने से, भगवान की भक्ति करने से दिव्य आंखें हमें प्राप्त हो सकती हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैः सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यदः। शास्त्र में बताया जाता है, जब हम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं उनकी कथा के बारे में, तब धीरे धीरे से भगवान, उनका नाम इत्यादि स्फुरित हो जाता है हमारे हृदय में। तो भगवान को जानना है, भगवान को देखना है, तो इन कानों से, इन हाथों से ये कठिन है, लेकिन जब भगवान की सेवा करने से हमारे दिव्य, ये हमारे आध्यात्मिक इंद्रियां जाग जाती हैं, तब हम समझ पाएंगे कि भगवान क्या है, भगवान कौन है, फिर हम भगवान को देख पाएंगे। भगवान को हृदय के आंखों से देखना है, इन आंखों से नहीं जिसको चश्मे की जरूरत पड़ती है, जो अंधकार में देख नहीं सकती है, ऐसे आंखों से नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि भगवान को देखना इसका क्या मतलब है। कई बार बाहर के लोग जब कैसेट बनाते हैं भजन के वगैरह, ऐसे भजन कहते हैं, प्रभु जी आपका दर्शन दो, हे प्रभु हम आपके दर्शन के अभिलाषी हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन निजी जीवन में भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो ऐसे अगर भगवान का दर्शन मिले तो उसका क्या लाभ होगा, क्या वास्तविक दर्शन ये है। वास्तविक दर्शन क्या होता है भगवान का, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भगवान का दर्शन लेना, इसका क्या मतलब है? इसके बारे में श्री रूप गोस्वामी, जो हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में प्रमुख आचार्य रहे हैं, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में बतलाया है। स्मेरम भंगी त्रय परचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टि वंशी न्यस्ताधर किशलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकेण गोविंदाख्याम हरितनुम मितः केशितीर्थोपकंठे मापेक्षिष्ठस्तव यदि सखे बंधु संगे स्तिरंग। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि एक वृंदावन की गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि हे सखी, होशियार रहना, सावधान। किस बारे में सावधान? देखो, अगर तुम्हारे सगे संबंधियों के प्रति, तुम्हारे पत्नी, पति, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, सहेली, मित्र इत्यादि, इनके संग अगर तुम्हारी आसक्ति है और इस आसक्ति को बनाए रखना चाहते हो, संसार से संबंध तोड़ना नहीं चाहते हो, संसार को भूल नहीं जाना चाहते हो, तो सावधान, यमुना के तट पर वंशीवट के पास में न जाना। क्यों? क्योंकि वहां पर गोविंद नाम के एक कायक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति क्या कर रहा है? स्मेरम, हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पे है। भंगी त्रय परिचिताम, अपना शरीर जो है तीन जगह बका हुआ है, इसलिए उनका नाम है त्रिभंग ललित। आप कह सकते हैं भगवान कृष्ण का शरीर कौन से तीन जगह में बका हुआ है? कोई बता सकते हैं? हाँ जी, पहले गर्दन, कमर और चरण, तीन जगह भगवान का दिव्य शरीर बका हुआ है, इसलिए उनका नाम है बांके बिहारी। तो इस प्रकार से गोपी वर्णन कर रही हैं, हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर है, शरीर तीन जगह बका हुआ है। स्मेरम भंगी त्रय परिचिताम साचि विस्तीर्ण दृष्टिम, उनकी दृष्टि कैसी है? टेढ़ी नजर है, तिरछी नजर मार रहे हैं, सीधे नहीं देखते कभी। ये जो गोविंद है, देखते हैं तो यूं टेढ़े देखते हैं, कहीं पर सीधे नहीं देखेंगे, लेकिन उनकी टेढ़ी नजर से होशियार रहना। वो जो टेढ़ी नजर है, एक ऐसे तीर के बराबर है जो सीधे हमारे हृदय में आकर हमारे सारे संसार के आसक्तियों को नष्ट कर देती है। और ये तीर का सामना करने की शक्ति जो है किसी में नहीं है। और हरितनुम इतः, इनका शरीर ये कौन है? साक्षात भगवान है श्री हरि। स्मेरम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी न्यस्ताधर किशलयाम, वंशी बांसुरी बजा रहे हैं और अपने होठों से इसमें अमृत भर रहे हैं। और चांदनी पूर्णिमा के चांद में जब खड़े रहते हैं, उज्ज्वलाम चंद्र केण, तो पूर्णिमा के चांद के बराबर चमकते हैं। गोविंदाख्याम हरितनुमित केशी तीर्थोपकंठे, तो केशी घाट पर यमुना के तट पे खड़े हैं। अगर आपको आसक्ति है संसार से, तो वहां उसके पास नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उस गोविंद का दर्शन करोगे तो संसार को भूल जाओगे। ये है दर्शन। अगर वास्तव में कोई भगवान का दर्शन करेगा तो संसार को तो भूल ही जाएगा, और जब संसार को भूल जाएगा तो संसार को भोग कैसे करेगा? संसार को भोग करने की इच्छा कैसे रहेगी उसके हृदय में? इंद्रिय तृप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं आएगा फिर। तो भगवान के दर्शन का मतलब है कि जब हम दर्शन लेंगे तो बाकी सब कुछ भूल जाएंगे, केवल भगवान के भक्त बन जाएंगे। तो हम सब अपने आप को हमारे हृदय में ये प्रश्न पूछ सकते हैं। हम मंदिर तो आते हैं, राजा कुंज बिहारी जी का दर्शन करते हैं, लेकिन क्या हम कर रहे हैं दर्शन? इसकी परीक्षा हमें लेना है। संसार को भोग करने की इच्छा खत्म हो गई ये अभी तक है, कम हो रही है ज्यादा हो रही है, वो हम परीक्षा कर सकते हैं। अगर कोई साधारण व्यक्ति जो योग्य नहीं है वो अगर भगवान का दर्शन करता है और बाद में इंद्र तृप्ति जारी रखता है तो उसके दर्शन का क्या लाभ, क्या मतलब? इसलिए जब तक कि हम भगवान हम इंद्र तृप्ति की भावना से पूरी तरह से मुक्त नहीं होते हैं तब तक भगवान हमें दर्शन नहीं देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है, हम तैयार नहीं है भगवान का दर्शन करने के लिए। क्योंकि अगर कच्चे अवस्था में भगवान का दर्शन हम करते भी और इंद्र तृप्ति भी चालू रखते तो ऐसे दर्शन में कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसे पूछते हैं कि क्या आप हमें भगवान का दर्शन दिला सकते हैं, आप भगवान दिखा सकते हैं, तो हमें उनसे कहना चाहिए कि अवश्य दिखा सकते हैं, लेकिन आपको तैयार होना है, आपको योग्य होना है, फिर आप भगवान का दर्शन कर पाएंगे। ऐसे कितने सारे कथाएं हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि केवल योग्य व्यक्ति ही भगवान का दर्शन कर सकता है और अयोग्य व्यक्ति दर्शन करते हुए भी नहीं करता है, पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता है। जैसे कि दुर्योधन ने स्वयं साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन किया, एक बार नहीं कई बार, बार बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण से दुर्योधन कई बार बोले भी। जब धृतराष्ट्र के दरबार में संजय आए थे, संजय ने भगवान श्री कृष्ण की कथा की, उनका गुणगान किया, उस समय व्यासदेव और गांधारी विदुर इत्यादि उपस्थित थे और धृतराष्ट्र इतने प्रभावित हुए संजय के प्रवचन से कृष्ण भगवान के ऊपर, तो वो कहने लगे कि वास्तव में संजय तुम जो बोल रहे हो वो सही है कि हम जिस व्यक्ति को केशव कहते हैं, मधुसूदन कहते हैं, जिसको हम अपना एक लड़के के रूप में हम उसको जानते हैं, वो वास्तव में भगवान है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक है? तो संजय ने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, वही श्री कृष्ण वही अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है। और संजय ने भगवान कृष्ण के पवित्र नामों की व्याख्या आरंभ की। धृतराष्ट्र का हृदय पिघल गया, गांधारी का हृदय भी पिघल गया, दोनों कृष्ण कथा सुनते रहना चाहते थे। सुनते सुनते धृतराष्ट्र को याद आया कि अरे ये दुर्योधन को यहां होना चाहिए सुनने के लिए। जैसे कई बार माता पिता भक्ति में रुचि रखते हैं, बच्चे नहीं रखते, कोई भक्त उनके घर में जाते हैं तो बच्चों को बैठ बोलो बैठो सुनो भक्त जो कह रहे हैं, तो धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि दुर्योधन भी कुछ दो अच्छे शब्द सुने। दुर्योधन ने भी बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन सुनने के बाद जानने के बाद वही दुर्योधन ने जिसने कि कई बार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया था, उसने क्या कहा, अगर ये श्री कृष्ण मधुसूदन या केशव अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक क्यों न हो, अगर ये सृष्टि कर्ता क्यों न हो, अर्जुन और कृष्ण मिलकर अगर सारे सृष्टि का संहार क्यों न करें, लेकिन मैं ये कृष्ण के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, ये भगवान हो कोई भी हो, लेकिन मैं इसके सामने सर नहीं झुकाऊंगा। और बल्कि जब कृष्ण शांति दूत बनकर आए तो दुर्योधन ने कैसे स्वागत किया, हाँ फूलों से किया, बड़े धूमधाम से किया, लेकिन हृदय में क्या था, हृदय में दुर्योधन चाहता था कि कृष्ण को हम धोखा देकर अपने पक्ष में ले लें, फिर अर्जुन क्या कर पाएगा, और अर्जुन कुछ नहीं करेगा तो फिर पांडव क्या करेंगे, तो राज्य हमारा हो जाएगा। लेकिन भगवान ने दुर्योधन को ठुकरा दिया। तो दुर्योधन ने भगवान का दर्शन लिया लेकिन फिर भी नहीं लिया, इंद्र तृप्ति की इच्छा तो खत्म नहीं हुई, बल्कि और तीव्रता से प्रज्वलित रूप से ईर्ष्या और भोग की अग्नि दुर्योधन के हृदय में जलती रही। तो अगर ऐसे होना है तो भगवान का दर्शन न लेना ही अच्छा है। तो इसका मतलब है कि भगवान का दर्शन हमें एक अनुकूल भावना से करना चाहिए, तैयार होकर करना चाहिए। जब हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा उस समय भगवान खुद ब खुद हमें दर्शन दे देंगे, कोई हमें जल्दी नहीं करनी है इसके लिए। तो क्या है वो योग्यता जो हमें भगवान का दर्शन लेने के लिए चाहिए, इसके बारे में फिर रूप गोस्वामी बताते हैं। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। वो कहते हैं कृष्ण भक्ति का रस जो है कहीं मिल रहा हो जल्दी से खरीद लीजिए। क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, जहां भी अगर कोई बेच रहा हो जल्दी से खरीद लीजिए। अब कौन सा दुकान है जहां ये मिलेगा, कौन से किराने की दुकान में, शॉपिंग सेंटर में कहां मिलेगा ये? कौन सा दुकान है, कौन ऐसे दुकानदार है जो हमें ये दे सकता है? बहुत कठिन है। क्या मूल्य है इसका? अगर कृष्ण को खरीदना है, कृष्ण का दर्शन लेना है, तो क्या कीमत हमें चुकानी पड़ेगी? तो रूप गोस्वामी बताते हैं तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। वो कहते हैं इसके लिए एक ही मूल्य है, मूल्यम एकलम, और वो एक ही मूल्य क्या है? तत्र लौल्यम, आपको लालसा होनी चाहिए, लोभ होना चाहिए भगवान को जानने के लिए, भगवान को देखने के लिए तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए कि मुझे भगवान का दर्शन लेना है, मुझे भगवान चाहिए, भगवान की भक्ति मुझे चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, भगवान की सेवा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अगर ऐसी तीव्र उत्कंठा हमारे हृदय में आई तब हम योग्य होंगे भगवान को जानने के लिए, भगवान को देखने के लिए। वैष्णव आचार्य में से एक प्रमुख रहे हैं बिल्वा मंगल ठाकुर। बिल्वा मंगल ठाकुर का नाम शायद आपने सुना होगा। उन्होंने कई महत्वपूर्ण वैष्णव ग्रंथों की रचना की, जैसे कि कृष्ण करणामृत। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण करणामृत बार बार पढ़ा करते थे, बल्कि बिल्वा मंगल ठाकुर के और उनके साथ साथ जयदेव गोस्वामी, चंडीदास, विद्यापति, इनकी कविताएं, भजन हर रोज जगन्नाथपुरी में पढ़ा करते थे। तो बिल्वा मंगल ठाकुर वैसे गृहस्थ हुआ करते थे अपने युव अवस्था में, लेकिन भगवान की योजना थी, बड़े भक्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति इतनी तीव्रता से प्रकट नहीं की थी। इसलिए संसार की दृष्टि से ऐसे लग रहा था कि ये बड़ा अनैतिक जीवन जी रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पिताजी का मौत, इनकी मृत्यु हो गई और श्राद्ध वहां चल रहा था। अब बिल्वा मंगल एक वेश्या से हमेशा संग किया करते थे जिसका नाम था चिंतामणि, और श्राद्ध का समय था। लेकिन बिल्वा मंगल के मन में विचार आया कि नहीं, मुझे चिंतामणि के पास जाना चाहिए। सभी ने कहा कि अरे बिल्वा मंगल, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, इतने सारे लोग आए हैं और तुम ही चले जा रहे हो, और इस कारण के लिए? तो रहो, थोड़े एक चार दो चार घंटे की बात है, फिर जो करना है सो करो। लेकिन बिल्वा मंगल ने कहा नहीं, मुझे अब जाना है, इसी क्षण मुझे जाना है। बाहर मूसलधार वर्षा हो रही थी, कुछ नहीं देखा बिल्वा मंगल ने, घर छोड़े, श्राद्ध चल रहा था, ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, रिश्तेदार आए हुए थे, अपनी नवयुवती पत्नी थी, सब कुछ छोड़कर चले चिंतामणि का संग करने के लिए। और भीगते भीगते नदी के तट पर पहुंचे, देखा नहीं कि भीगते जा रहे हैं, इतनी जोर से वर्षा हो रही है, कोई परवाह नहीं की। वहां पर इतनी बाढ़ आ गई थी नदी में, कोई नौका चलाने के लिए तैयार नहीं था। हर एक माझी ने कहा हम तो नहीं ले जा सकते, जान का खतरा है, कोई आपको नहीं ले जाएगा। लेकिन बिल्वा मंगल ठाकुर ने आशा छोड़ी नहीं। बिल्वा मंगल ने कहा देख और कुछ रास्ता होना चाहिए। अचानक उन्होंने देखा कि एक झाड़ वहां पर तैरते हुए जा रहा है पानी के प्रवाह में, तो छलांग मार दी पानी में, उस झाड़ को पकड़ लिया और तैरते हुए नदी पार करके चले गए। नदी के उस पार पहुंचे तो क्या देखते हैं कि ये तो कोई झाड़ नहीं है बल्कि एक शव है, मृत शरीर, डेड बॉडी, फिर भी परवाह नहीं की, ऊपर चढ़ के चलते गए और वहां पर चिंतामणि के घर को आ पहुंचे। चिंतामणि का कमरा पहले मंजिल पे था, देखा कि बहुत खटखटाने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, तो सोचा कि चलो अभी हमें खिड़की तक चढ़ के जाना होगा। इतने बड़े व्यक्ति थे समाज में, फिर भी ये नहीं देखा कि क्या हालत थी उनकी, और अभी खिड़की में चढ़ने जा रहे हैं, और वहां देखा कि कोई लता है, वन लता है, लता को पकड़ कर हम जाएंगे ऊपर, कोई झाड़ जैसे कोई चीज है। जब खिड़की तक पहुंचे तो क्या देखा कि झाड़ नहीं, लता नहीं, बल्कि सांप है। लेकिन उनकी व्यवसायात्मिका बुद्धि, एक एकाग्र चित्त से केवल चिंतामणि के पास जाना चाहते थे, इसलिए कुछ नहीं देखा। मृत शरीर है, सांप है, बारिश है, बाढ़ है, अपनी जान को भी खतरे में डालकर चिंतामणि की ओर चले जा रहे थे बिल्वा मंगल। और आखिर खिड़की तक पहुंचे, खिड़की खटखटाने लगे, चिंतामणि ने दरवाजा खिड़की खोल दी और क्या देखा कि बाहर बिल्वा मंगल। बहुत आश्चर्य हो गया, आइए आइए अंदर आइए। और जब देखा बिल्वा मंगल इतने थक गए थे कि आके बस गिर पड़े वहां पर कमरे में। और चिंतामणि ने देखा और कहा कि क्या हालत है, क्या दशा है। चिंतामणि को अच्छी तरह से मालूम था कि इस समय बिल्वा मंगल के पिता का श्राद्ध चल रहा था, तो चिंतामणि ने केवल एक उत्तर दिया, एक वाक्य कहा कि बिल्वा मंगल, जिस तीव्रता से आप मेरा पीछा कर रहे हो, मुझे पाने की इच्छा है आपके हृदय में, उतनी ही तीव्रता से आप अगर श्री कृष्ण के सेवा करने के आतुर रहते तो आपका जीवन धन्य हो जाता, आप शुद्ध भक्त हो जाते। ये जो एक वाक्य है, बिल्वा मंगल के हृदय में तीर के जैसे प्रवेश किए। उसी क्षण बिल्वा मंगल ने संसार को त्याग दिया। हाँ, वास्तव में तुमने जो कहा है बिल्कुल सही है। और आगे चल के जब बिल्वा मंगल ने अपने ग्रंथ लिखने आरंभ किए और बहुत बड़े भक्त बन गए थे उस समय, उन्होंने चिंतामणि को अपना पहला गुरु माना, कहला कि चिंतामणि ही मेरी पथ प्रदर्शिका, वर्तमान प्रदर्शक गुरु है। चिंतामणि ने मुझे श्री कृष्ण तक रास्ता दिखाया, क्योंकि चिंतामणि ने मुझे कहा था कि जिस आतुरता से, उत्कंठा से मेरे संग के अभिलाषी हो, उतनी ही उत्कंठा अगर कृष्ण भगवान के प्रति रखोगे तो तुम शुद्ध भक्त बन जाओगे। उस आदेश को, उस उपदेश को बिल्वा मंगल ने अपने हृदय में रखा था। इसका मतलब है कि अगर हम आतुर रहेंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए, तीव्र इच्छा रहेगी भगवान को प्राप्त करने के लिए, ये हमारी योग्यता है। संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए, कई साल तक वहां पर रहे और हर रोज भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे। और हमेशा जगन्नाथ मंदिर के अंदर गरुड़ स्तंभ के पास में खड़े होकर जगन्नाथ जी का दर्शन किया करते थे। एक बार ऐसे हुआ कि बहुत भीड़ थी मंदिर में, कई लोग दर्शन के लिए आए थे और चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर भगवान का दर्शन ले रहे थे। उस समय एक गांव की महिला आई, वो थोड़ी ऊंचाई में कमी थी, कम ऊंचाई थी उस महिला की, और भगवान का दर्शन नहीं ले पा रही थी और बहुत आतुर थी दर्शन लेने के लिए, इधर उधर देख रही थी, भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा था। तो क्या किया, तुरंत गरुड़ स्तंभ को पकड़ के ऊपर चढ़ने लगी। और चढ़ तो गई, लेकिन कैसे ऊपर चढ़े, चैतन्य महाप्रभु के कंधे के ऊपर पैर रख के। देखा नहीं बाएं दाएं कौन है कौन नहीं है, इतनी आतुर थी भगवान का दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी का। तो जब चैतन्य महाप्रभु के सेवक गोविंद ने देखा, हैरान हो गए, अरे 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 क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, देखते नहीं हो, चलो चलो नीचे उतरो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं ठहरो ठहरो गोविंद, कुछ मत कहो। लेकिन फिर भी तब तक वो महिला को पता चल गया कि अरे अरे मैंने क्या कर दिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उस महिला की प्रशंसा करने लगे कि ये महिला कितनी भाग्यशाली है, देखो इसके हृदय में इतनी उत्कंठा है भगवान का दर्शन करने के लिए। अगर मेरे हृदय में एक बूंद भी इतनी तीव्र इच्छा होती तो आज तो मैं भगवान का शुद्ध भक्त बन गया होता। वास्तव में ये भक्त, ये माता जी जो है, ये महिला है, ये भगवान के असली भक्त है। देखो कितनी उत्कंठा है इसके हृदय में। तो ऐसी तीव्र इच्छा ये चाहिए है। जब नारद जी व्यासदेव जी को अपना दर्शन देने आए और इस घटना का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में आता है, तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। वो कैसे कृष्ण भावना के पद पर आए, कैसे भक्त बने, आपको कथा अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले वो एक दासी के पुत्र थे और उनके घर में कई भक्ति विद्वान, कई महान साधु, महाभागवत भक्त आए। उनका संग प्राप्त करके वो बालक भक्ति के पद में आ गया। उन्होंने उनको बहुत कुछ सिखलाया, प्रशिक्षण दिया और उस समय वो बालक केवल 5 साल का था। फिर चातुर्मास के बाद में ये सारे साधु चले गए और अपनी माता के साथ में ये बालक रहा करता था। और एक दिन ऐसे हुआ कि माँ जब गाय का दोहन करने के लिए बाहर चली गई तो सांप ने काट दिया उसको और माँ की मृत्यु हो गई और ये 5 साल का बालक दुनिया में अकेला रह गया। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई साथी नहीं, कुछ नहीं, अकेला 5 साल का बालक। इतनी कम उम्र होते हुए भी बालक रोने नहीं लगा, हाय हाय करने नहीं लगा, शोक नहीं किया उसने, जैसे उन भक्ति वेदांतों ने आदेश दिया था उसे। वो जंगल में जाकर तपस्या करने लगा, जगह जगह भ्रमण करने लगा, गांव में, गोचर भूमि में, जंगलों में, पहाड़ों में, खेती में, खेतों में। ऐसे जब बहुत थक गया तो एक जगह बैठकर वन में झाड़ के नीचे ध्यान करने लगा। ध्यानावसित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। तो ध्यान में स्थित भगवान ने उनको दर्शन दिया। जैसे ही अंदर ध्यान करके गए, तुरंत उनके हृदय के कमल के ऊपर भगवान आकर उपस्थित हुए। साक्षात भगवान उनके आंखों के सामने प्रकट हुए। जब बालक ने अपनी आंखें खोली तो भगवान का सुंदर दृश्य देखा। पीतांबर धारण किए हुए, काले बाल, बिल्कुल सुंदर आंखें, कमल नयन, श्रीवत्स, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। और इस दृश्य को देखकर सारे भक्ति के जो अष्ट सात्विक विकार हैं वो लक्षण प्रकट होने लगे। उस बालक का कंठ गदगद हो उठा, रोमांच खड़े हो गए, आंखों से अश्रु धारा होने लगी इत्यादि। और वो बालक देखते रह गया, कुछ बोल नहीं पाए, स्तब्ध हो गया। और थोड़े क्षण के बाद भगवान पुनः ओझल हो गए, अदृश्य हो गए। उस समय बालक को बहुत बुरा लगा, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब हो, अचानक उसे बहुत सारा धन मिले और फिर अचानक वो धन उसे छीन लिया जाए, उसे कैसे लगेगा? क्या समझ लीजिए कि बहुत एक व्यक्ति बहुत समय से भूखा है, उसके सामने आपने राजभोग की थाली रख दी, भगवान का प्रसाद, फुल्ले, गुलाब जामुन, पुलाव, ये वो बहुत कुछ, और खाने ही वाला है कि आपने थाली उठा कर ली, तो कैसे लगेगा? या मान लीजिए कम चख लिया लेकिन आपने थाली उठा कर ली। ठीक उसी प्रकार से ये बालक, उसने भगवान का दर्शन कर लिया था और अचानक भगवान पूजन हो गए। इतना दुख हुआ इस बालक को, उसने सोचा नहीं, मुझे भगवान का दर्शन फिर से लेना है। फिर से उसी मुद्रा में बैठ गए जैसे वो पहले बैठा था, लेकिन भगवान आए नहीं सामने, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। जैसे पहले बैठे थे, जैसे ध्यान के लिए प्रयत्न कर रहे थे, वैसे कोशिश करते रहा बेचारा बालक। ऐसे बैठा, वैसे बैठा, जैसे पहले ध्यान किया था इस प्रकार से ध्यान किया, उस प्रकार से ध्यान किया, लेकिन भगवान आए नहीं। बहुत व्याकुल हो गए। अचानक भगवान ने कृपा की उसके ऊपर और एक आकाशवाणी हुई और भगवान बोलने लगे कि हे वत्स, इस जीवन में मैं तुम्हें कभी दर्शन नहीं दूंगा। मैंने इस समय दर्शन तुम्हें एक बार इसीलिए दिया कि तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की जो इच्छा है
वो और तीव्र बने, तुम्हें मेरे भक्ति के रस का एक बूंद मिले, एक बूंद चखने के बाद में तुझे तुम्हें इस अमृत का पान करने की तीव्र इच्छा हो जाए, इसके लिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। और इस दर्शन के जो जब तुम अभिलाषी रहोगे, तीव्र इच्छा करते रहोगे, ये तीव्र इच्छा जो है तुम्हारे हृदय के भीतर जो भी थोड़ा बहुत कलमश बच गया है उसको खत्म कर देगा। और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं मेरे वत्स कि इस जीवन के बाद में तुम मेरे धाम को लौट कर आओगे, तुम मेरे ही स्वजन हो जाओगे और तुम कभी भी इस जीवन में माया में नहीं पड़ोगे। केवल मेरा स्मरण करते रहना, मेरे ऊपर ध्यान करते रहना, मेरा गुणगान करते रहना, बस। इसका मतलब है कि भगवान ने जानबूझकर उस बालक को दर्शन दिया और फिर अदृश्य हो गए, क्योंकि वो चाहते थे कि वही उत्कंठा, वही आदुरता उस बालक के हृदय में जागृत हो और हमेशा वो बालक ढूंढता रहे कि मैं वही चाहता हूँ, वही दर्शन भगवान का चाहता हूँ जो कि मुझे इतने साल पहले मिले। ऐसे इस बालक का सारा जीवन बीत गया, वो बड़ा हो गया, अंत में मृत्यु हो गई और फिर बाद के जन्म में वो नारद मुनि बन गए। नारद मुनि के रूप में उनको पूर्ण आध्यात्मिक शरीर मिल गया। इस प्रकार से हमें चाहिए कि जब हम बड़े आतुरता से भगवान की भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो हमारे हृदय के अनंत नष्ट हो जाते हैं। अगर हम सोचेंगे कि ठीक है चलो भक्ति कर रहे हैं, हमारा जप भी करेंगे, यांत्रिक ढंग से हम करते जा रहे हैं, तो रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, जन्म कोटि सुख दे न लभ्यते। आप ऐसे कोटि कोटि जन्म भी करते रहिएगा, भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान का दर्शन नहीं होगा। इसलिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए, जैसे कि गोपियों की। जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते वंशी वट पर, तो गोपियां सब कुछ छोड़ के वहां पर भाग के गई थी। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई बच्चे को खाना खिला रही थी, कोई घर में रसोई कर रही थी, कोई काम कर रही थी, हर चीज को छोड़कर उसी क्षण सब लोग वंशीवट की ओर भाग पड़े। ये नहीं परवाह की कि कल हमारा क्या होगा, हमारे परिवार हमें त्याग करेगा और बाद में क्या होगा हमारा, बिल्कुल परवाह नहीं की। और ऐसे थोड़े गोपी थे जिनको जाने से रोका गया, तो भगवान को देखने की तीव्र इच्छा, इतनी तीव्र